कल बाबा का मिलन हुआ, झूठ मूठ ऐसे कहने के लिए हुआ हुआ सचमुच, क्योंकि बाबा के हाथ में है, वो एक सेकंड में कुछ भी करा सकता है। पर दो का अनुभव खराब सा सुना देता हूं। एक तो किचन में आ गई माता सवेरे, आज टीचर सहित चार पांच थी, कहा मैं पिछली बार आई थी तो भी बाबा नहीं आए थे, इस बार आई तो भी नहीं आए, मेरा कैसा भाग्य है, बेचारी रोने लगी। दूसरा एक ग्रुप ही आया, उनका एक ही प्रश्न, हमने क्या ऐसा पाप किया जो हम आए तो बाबा नहीं आया। संकल्प तो उठता है ना। हाँ मन तुम्हारा हुआ प्रभु मिलन, हुआ योग में तो बाबा अच्छा सुख दे ही देता है, फिर भी हम सब चाहते हैं ना नीचे आ जाए एक बार, वो तो प्रैक्टिकल इच्छा है और उसके लिए ही सब भागे आते हैं। हम चर्चा करेंगे संडे की मुरली पर फिर से, और उसमें भी पहले एक बात पर, बाबा सदा साथ और सहयोग देने के लिए तैयार है, और सभी के मन में ये बात गूंजती होगी, दो भुजा वालों का साथ लेते हो, बोलो आगे, हजार भुजा वाले का क्यों नहीं, सबको अंडरलाइन कर दे नीचे, रट डालो इसे, याद आए, क्योंकि मनुष्य तो साकार में है और हमें उनके सहयोग की रोज आदत भी है और सहयोग मिलता है, हम सहयोग लेते और देते हैं। बाबा का ही सहयोग लेना इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि दो भुजा वालों को बिल्कुल हटा दो, तुम्हारी जरूरत नहीं। अब कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं, इसकी जरूरत नहीं, मनुष्यों का सहयोग लेने के लिए भी हमें उन्हें स्नेह देना होता है, जहाँ स्नेह है वहाँ सहयोग है। और बाबा ने कभी बहुत गहरी बात भी कही है, जो कल्प वृक्ष का बीज है उसे यदि स्नेह का पानी देंगे, पेड़ को पानी देते हैं तो क्या मिलता है, पत्ते भी अच्छे आ जाएंगे, फल भी मिलेगा। तो कल्प वृक्ष के बीज को यदि स्नेह का पानी देंगे तो सर्वात्माओं का सहयोग फल प्राप्त हो जाएगा, ये बड़ी सूक्ष्म बात है, ऑटोमेटिकली होता रहेगा, जहां सहयोग की जरूरत पड़ी वहां मिलने लगा। अब हम विचार करें संगम युग पर, बाबा के सहयोग की हमें जरूरत पड़ती है, जहां हमारी शक्तियां भी फेल हो जाती हैं, जहां मनुष्य भी हमें साथ नहीं देते, वहां बाबा की शक्तियों की सहयोग की जरूरत पड़ती है, कैसे लें। कल का आपने सुना होगा, एक भाई अर्जुन नीचे इंजीनियर, बाबा के समय से ज्ञान में, हमारा जो नीचे ग्रुप है उसका फर्स्ट क्लास स्टूडेंट, वो बहुत अच्छी स्थिति, बहुत अच्छी सेवाओं में समर्पित कई साल से। कल सवेरे योग हुआ, बाबा का दिन था, योग किया उसने, योग करके स्नान आदि करके 5:45 बजे उसको पेट में दर्द जैसा हुआ, वही डिस्पेंसरी है वहां गया और ऊपर गया ऊपर, शरीर छोड़ दिया, एक अच्छा दिन, और हमने 2-3 दिन पहले ही वहां के लिए क्लास की थी जिसमें प्रैक्टिस भी थी आज की, और वो बहुत अच्छी करता था। आज उसने, कल उसने बहुत अच्छी की होगी निश्चित रूप से। और वैसे बाबा का दिन था और योग किया, कोई कष्ट नहीं, बस इतना ही कि पेट में दर्द हुआ और पैदल चल के डिस्पेंसरी तक गया, 5 मिनट लगे। और वहां तब तो कोई होता नहीं, जो भी कोई था वही कहा पेट दर्द हो रहा, बस वहीं करते करते गया वहीं। तो देखो कितनी अच्छी स्थिति, कितना सुंदर समय, बाबा की याद और कष्ट भी नहीं। ये बाबा की मदद है ना बहुत बड़ी, शरीर छोड़ना और वो भी सहज, बाबा के दिन बहुत अच्छी स्थिति में, ये किसी भी आत्मा के पुण्यों का ही फल है ना, किसी से कोई सेवा नहीं ली। तो मुझे बताया कर अर्जुन भाई ने शरीर छोड़ दिया, मैं कई अर्जुन है, मैं सोचने लगा कौन अर्जुन भाई फिर नीचे भी कई अर्जुन है ना फिर बताया तो अच्छा सारी कहानी सुनाई, ऐसे हो गया है। तो बाबा की मदद किन्हें मिलती है बोलो, जो बाबा को साथ रखते हैं, और बोलो जो हिम्मत रखते हैं, बहुत अच्छी बात, और बोलो और बोलो, सारी बात नहीं बोलेंगे, श्री मत में तो सब आ गया। पहले बाबा याद आता है, ये देखो अच्छी बात हो गई, याद ही बाबा आए। और जिन्होंने बाबा के कार्यों में बहुत मदद की है, उन्होंने तो बाबा को बांध लिया है ना, सहयोग देने के लिए बांध लिया है। जिन्होंने भी बाबा को मदद की है, उसमें भी एक और बहुत अच्छी बात इसी हॉल की, 74 की बात है, 74 में ये हॉल बना था, सिंपल था तब, छत भी नहीं थी, टीन की छत थी, फर्श भी वैसा ही था। तो एक बहन नाम सावित्री, हांगकांग में जिनके परिवार अब भी रहते हैं और बहुत ज्यादा सहयोगी हैं और उनके सहयोग से वहां सेंटर है, वो सावित्री बहन 4 साल के बाद मधुबन में आई और उसने बाबा को कहा, दादी को कहा कि मैं 4 साल के बाद आई हूँ। बाबा तो बहुत मिलते थे ना उन दिनों, 4 साल में तो बाबा कितनी बार आ गए होंगे, 1 साल में कम से कम 50 बार, 200 बार आ गए होंगे, और वो बहुत समीप थे, यही उनके युगल बुजुर्ग थे, म्यूजियम में रहे, बहुत मिलते थे। उन्होंने कहा दादी बाबा को बुलाओ, मुझे मिला दो, पता नहीं फिर मैं कब आऊं। गुलजार दादी यही थी, भोग लगाया, अगले दिन गुरुवार था, बाबा ने बोर्ड दिखाया, ऊपर उस पे लिखा था ड्रामा, समझ गए ना, आने का पार्ट नहीं है। अब उसको इससे संतुष्टि तो नहीं हुई, दादी ने उसको कहा अगले दिन वैसा रात योग करो, तब ये बहुत ज्यादा रसम जैसी थी, योग करो शायद रात बाबा के रूम में बैठ के। बैठी वो शायद रात, अगले दिन फिर बाबा को भोग लगाया और बाबा आ गए। तो बाबा का पहला महावाक्य था, पहली लाइन, जो बच्चे आई वेल के समय, आई वेल का अर्थ बताता हूं मैं, जो बच्चे आई वेल के समय बाप को मदद करते हैं, बाप बंद जाता है उनको मदद करने के लिए। आई वेल माना इमरजेंसी में, समय पर, जब आवश्यकता हो। मान लो एक व्यक्ति बेचारा बीमार है और उसको 100 रुपए की जरूरत है दवाई के लिए, और कोई उसे दे दे और उसको बहुत मदद मिल जाए या जान ही बच जाए, तो वो व्यक्ति कितना एहसानमंद होगा। तो ये वो व्यक्ति थे दोनों युगल जिन्होंने बैगरी पाठ के बाद यज्ञ में बहुत मदद की थी पैसे की। धारणाओं में तो दोनों अच्छे थे ही बहुत, लेकिन यज्ञ को बैगरी पाठ से निकालने के लिए उस समय बहुत मदद की थी। ये हमें तब नहीं पता था जब बाबा की मुरली चल रही है, बाद में बताया गया, तब हमारी समझ में, तब से मुझे ये बात याद रहती है। चाहे यज्ञ सेवाएं कभी विशेष जरूरत पड़ जाती है, स्थूल सेवा की भी हम बात कर रहे हैं। मान लो अभी हो गया कि भाई 500 लोग आ रहे मधुबन में भोजन खिलाना है, तो दादी जब थी पता क्या करते थे, सब आ जाओ। दादी भी आई, मनोज दादी भी आई, सब आए, सब सब्जी काटो, सब मिलके बनाओ, सब खिलाओ। कितना अच्छा लगता होगा परिवार में। ऐसा हमारे समय कई बार हुआ, 500 तो नहीं पर 50 आ रहे अचानक, तो 50 भी काफी होते थे। दादी आ जाती थी किचन में, चलो रोटी बनवाओ सबसे, लोग आ गए फटाफट भाग के। तो समय पे मदद है ना, और कोई उस टाइम सोचे मेरी ड्यूटी थोड़ा है, मेरी ड्यूटी पूरी हो गई, मैं नहीं जाऊंगा, सोचना तो ये भी ठीक है, परंतु वो सोचते हैं मनुष्यों को मदद कर रहे हैं, पर मदद किसको जा रही है? सब यज्ञ सेवा में मदद करना माना ऊपर जो यज्ञ का बीज है उसको पहुंचना। तो इस तरह हम उसको बांध लेते, चाहे धन की बात हो, सेंटरों में मान लो मकान बन रहा है और कमी पड़ रही है, हो नहीं रहा काम, रुक गया, और कोई बाबा का बच्चा समय पर मदद करके उसे कंप्लीट कराता है, तो बहनों को तो अच्छा लगेगा ही, पर ये पहुंचता है सब ऊपर और इसका रिटर्न बहुत ही सुंदर है। तो जो बाबा को मदद करते हैं, बाबा को वो बोलो बांध लेते हैं। और कुछ ऐसे भी महारथी हैं, बताऊं कैसे, बता देता हूं। जब कोई कार्य चल रहा है वो सबको कहेंगे कुछ न देना, बहुत पैसा इनके पास, तो यज्ञ में भी आते हैं ना मधुबन में शांतिवन में, कहेंगे बहुत पैसा है यहाँ, तो क्या जरूरत है देने की, सत्य है यहाँ बहुत पैसा है, richest in the world, सुना है ना। बाबा जब साकार में थे तो आबू वाले कहा करते थे पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है ब्रह्मा कुमारियों के पास, तो बाबा कहते थे उन्हें कि कुआ है इधर, ये अब लोगों ने नहीं देखा है, यहाँ जहाँ आटा चक्की है ना इसके पहले कुआ, शायद ऊपर कवर है अभी कवर किया हुआ, वो दिखता नहीं, वहीं से पानी पीते थे हम सब बाबा के समय, तो कहा इसमें से पैसा निकलता है, लोग देखने आते थे, कहा तुम्हें नहीं दिखेगा। तो यज्ञ तो सदा भरपूर है, कोई यहाँ दे या न दे, लेकिन जो देगा उसका भाग्य बनता है। यज्ञ को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, सारे देना बंद कर दे तो भी ये भरपूर रहेगा। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं, सेंटरों में कई जगह ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कोई न देना, सेंटर में देनों के पास बहुत है, न देना, लेकिन जो नहीं देंगे बल उनको ही नहीं मिलेगा। मैं एक छोटा सा आज कल का अनुभव सुनाऊं, हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं मिलने, तो बेचारे लिफाफा कुछ ना कुछ देते रहते हैं। कल मैंने पूछा किचन में, भाई खीर बनेगी, बाबा के दिन खीर बनती है ना, तो हर बार ड्राई फ्रूट आता है बहुत खीर में डालने के लिए, कम से कम 10 किलो तो चाहिए इतने लोगों के लिए, कम से कम 10-12 किलो। मैंने पूछा ड्राई फ्रूट आ गया, कहा इस बार किसी ने नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, वहीं पास में दुकान है, तुम ले आओ, मैं देता हूं पैसे, जितने का भी आए ले आना। वो ले आए और ये हैरानी की बात थी कि मैंने उन्हें 10,000 रुपए दिए जो मुझे लोग दे गए थे, मुझे तो वहीं देना था ना, उधर दे दो या इधर दे दो। तो सब यज्ञ है ना, मैंने उन्हें 10,000 दिए और मेरे पास कल से और आज तक बहुत आ गए। मैं सोच रहा था ये भी कर्मों की गति बड़ी सुंदर है ना। हालांकि हमारा तो वो है ही नहीं कि हम कहीं से दे रहे हैं, भाई अपने भाई बहनों ने दिया हमने वहां दे दिया, हमने तो कुछ कमाया नहीं ना, या हम ईश्वर आदि को दे देते। लेकिन जो लोग कमा के दे रहे हैं उनका भाग्य बहुत बड़ा है। बहुत लोग इस चीज को नहीं जानते। आकार में बाबा से प्रश्न पूछती थी माताएं, हम दोनों ज्ञान में चलते हैं बाबा, हमारा पति यज्ञ में पैसे दे देता है तब कहते बीज बो देता है, हमारा भी भाग्य बनेगा क्या? नेचुरल प्रश्न है ना माताओं का, भाई हम तो उनके साथ हैं ना, कमाने वाले वही हैं। तो बाबा कहता था भाग्य तो बन जाएगा, लेकिन तुम यदि अपनी बचत करके लगाओगी तो उसका भाग्य बहुत ज्यादा है। तो सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें कि बाबा की मदद के पात्र वो बहुत बन जाते हैं जो उसके कार्यों में मदद करते हैं। ये पैसा आदि भगवान के लिए क्या है? क्या है माताएं? कागज है उसके लिए। वो चाहे तो मधुबन के सारे आंगन में सोने हीरे की बरसात करा दे आए रात को ही, और जब आप वो सवेरे उठो तो चलने को जगह भी ना हो, ये भी वो कर सकता है, पता है ना, उसके पास ये सब शक्तियां हैं। लेकिन वो हम सभी का भाग्य बनवाना चाहता है, यही बात है ना। इसलिए जो जिसके पास योग्यताएं हों, धन की शक्ति, मन के सुंदर संकल्प, उमंग, कोई अपनी कला योग्यता, जो सेवाओं में लगाते हैं निष्काम भाव से, उनका भाग्य बहुत बनता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति गीत तो गाता है, कोई गाने वाला तो नहीं बैठा, मेरी बात बुरा ना मान लेना भाई, कोई व्यक्ति गीत तो गाता है लेकिन इच्छा उसको ये है नाम हो जाए, मेरा नाम हो जाए, टीवी पे भी आ जाऊं, टीवी पे भी इसलिए आ जाऊं नाम हो जाए, सेवा हो इसलिए नहीं, उनका भाग्य नहीं बनता। और कोई गीत इसलिए गाए कि जो सुने वो बाबा की याद में मगन हो जाए, तो वो भी मगन हो जाएगा। निष्काम भाव बहुत बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज निष्काम भाव। परसों की मुरली में ये था, बाप तो दाता है, अगर कोई चाहता है मुझे मान मिले तो मिल जाएगा, उसके पास कोई कमी नहीं है, 10 लोगों से मान दिला देगा, लेकिन खाया और खत्म। इसको ही बाबा कहते थे कच्चा फल खा लिया, तो न उस सेवा का बल मिलता है न फल मिलता है, वहीं समाप्त हो जाती है, करने वाला खुश हो जाता है, हमारा बहुत नाम हो गया, हम भी कुछ हैं। इसलिए सेवा चाहे आप धन की करें, योग्यताओं से कोई सेवा करें, आप में कोई बहुत अच्छी कला है, कोई कोर्स कराने की, कोई लेक्चर देने की, माताओं में और कोई सेवा, मान की इच्छा बिल्कुल नहीं। एक ही प्रैक्टिकल घटना हुई, पूरा परिवार ज्ञान में अब भी है, कई साल पहले घटना, बहन जी ज्ञान सरोवर में आई, गीत गाती थी बहुत अच्छा, कहा भाई मैं गीत गाऊंगी, गाया, खुश हो गए सब, गीत गाया बहुत अच्छा। अब जब वो घर में पहुंची, उसके दो बच्चे और पति सब ज्ञान में, वो बात बात में अपने बच्चों को और पति को एक ही बात कहती, देखो मैं कहां पहुंच गई और तुम कहां रह गए। और बेचारे ये सुन सुन के वो थक गए, मुझे कहा भाई इसको आप लोगों ने गीत क्या गवा दिया, इसने तो हमारा जीना भारी कर दिया। कितनी छोटी चीज गीत गाना, कुछ भी नहीं है, उसको लगा मैंने सब कुछ पा लिया, शायद भगवान से बड़ी प्राप्ति हो गई, सुनने वालों को शायद भूल भी गया हो किसने आज गीत गाया, बाहर निकलते ही भूल गया होगा। किसी भी कार्य का अहम आ जाना ये मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। सेवा करने वालों में भी आ जाता है, मैं सेवाधारी बहुत हैं आप सबको खोल के बता दूं, आज सेवा की, मधुवन में दो चार बार आए फिर यहाँ से गए तो बहनों को सम्मान नहीं देते, भाई हमारा तो कनेक्शन हो गया मधुवन से, इससे क्या होता है फिर बहने भेजेंगी नहीं, अगर वो आने भी लगे तो औरों को नहीं भेजती बहुतों के साथ, क्योंकि हमारा सेवाधारियों को बुलाने का रहता है। कई जगह हम कहते हैं बहने आजकल आप नहीं भेजती, कि नहीं भाई अब नहीं भेजेंगे, लोग बिगड़ के आते हैं। तो इस स्थान पर आकर कोई ये गलत शब्द ही न दे के बिगड़ के आते हैं, यहाँ से यदि कोई बिगड़ के जाएगा तो सुधरेगा कहाँ, ठीक बात है ना। इसलिए बाबा ने जो कहा परसों, बोल में नम्रता और अमूल्य बोल, बाबा देखना चाहता है, कर्मों में संतुष्टता और निर्माणता देखना चाहता है। और प्योरिटी की तो बात बड़ी गजब की थी ना, और भ्रकुटी से लाइट फैलती नजर आए, सिर पे प्योरिटी का ताज दिखाई दे, आंखों में रूहानियत दिखाई दे, बहुत एक सुंदर चित्र बाबा ने खींच दिया था, वो तो बहुत जबरदस्त बात है। ये बाबा की शुभ इच्छा है और यही बहुत बड़ी चीज है। इसलिए हमारे बोल ऐसे हों, कई लोग जब जाते हैं ना सेवा करके तो थोड़ा सा अहम में आके बहनों से अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छे से अच्छा करना चाहिए ताकि लगे भाई ये सेवा करके आए तो महान बनकर आए हैं। आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो भी गया हो, कोई यहाँ से आपको डायरेक्ट बुलाता भी हो, ठीक बात है कोई नहीं, लेकिन अपनी महानताओं को, दूसरे को सम्मान देने को, उसमें भी अपनी बहनों को सम्मान देने को छोड़ना नहीं चाहिए, आखिर वो हमारी टीचर है ना, बहने हैं, सम्मान की पात्र हैं। तो हम सभी इस बात पे बहुत ध्यान दें, हमें निष्काम होना है। जो निष्काम भाव से कार्य करते हैं भले ही उन्हें उस समय कोई न जाने, लेकिन क्या होगा बोलो, हाँ उनका जमा बहुत होगा, उनकी स्थिति बहुत आगे बढ़ती जाएगी, और एक समय आता है जब उनके द्वारा ही अच्छी अच्छी सेवाएं होती हैं, क्योंकि आने वाले समय में सेवाएं किनके द्वारा होंगे। मैं बाबा की बात सुनाता रहता हूँ, अपने को भी सुनाता रहता हूँ, और बाबा के शब्द, जिन्होंने स्वयं में सर्व खजाने भर लिए होंगे, बाबा का ये महावाक्य है, आने वाले दिनों में सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं के द्वारा ही सेवा होगी। याद कर लें, बाबा ने कहा कोर्स एक घंटा नहीं देंगे, एक मिनट आत्मा का ज्ञान, एक मिनट, चलो तीन मिनट, तुम आत्मा हो, यहाँ हो, ज्योति हो जाओ आत्मा, बस लोग अनुभव करेंगे, अशरीरी हो जाएंगे, लेकिन किसके द्वारा होंगे, जो स्वयं अशरीरी हुए होंगे, लंबा काल जिन्होंने अशरीरी होने का अभ्यास किया होगा, उन्हें बताएंगे बाबा तुम्हारा है, वो पिता है, फ्रेंड है, तुम्हारा है, कहो मेरा बाबा, तुरंत फील होगी, फीलिंग होगी वो मेरा है, पर होगी किसके द्वारा, जिन्होंने उससे अपनापन जोड़ा होगा। इसलिए जो कुछ हम स्वयं करेंगे, हमारे मुख से बोले हुए बोल के द्वारा दूसरों को सहज अनुभूति होगी। सेवाओं की वृद्धि का भी यही तरीका है। जिनकी सेवाएं वृद्धि को नहीं पाती, उसका यही मुख्य कारण है कि ज्ञान दिया जाता है, मुरली भी सुनाई जाती है, लेकिन अगर वो चीजें अपने अनुभव में नहीं हैं, तो दूसरों के अनुभव में भी नहीं आती हैं। तो सभी इस बात पे ध्यान दें, फिर से आ जाएं वहीं, बाबा की मदद के हमें पात्र बनना है। ये बहुत अच्छी बात इसी होल में दिया गया एक बाबा का सुंदर मैसेज आपको सुनाऊं। बहुत पहले राखी के दिन बाबा का एक छोटा सा मैसेज आया। जैसे बाप विश्व रक्षक है, वैसे ही अंतिम समय में तुम आत्माओं को भी मास्टर विश्व रक्षक बनना है। और मास्टर विश्व रक्षक वे बनेंगे जिनमें प्योरिटी की शक्ति और योग की शक्ति होगी। तो जहां ऐसी आत्माएं होंगी, वहां आसपास की आत्माओं की भी सुरक्षा हो जाएगी। तब हमें अपने महत्व का पता चलेगा। हमने जो योग लगाया वो ऐसे ही नहीं, वो केवल विकर्म विनाश करने तक सीमित नहीं रहा, उसकी शक्तियां दूसरों की रक्षा करने लगी, दूसरों को मदद करने लगी। क्योंकि आने वाला जो समय होगा वो हमें बहुत वंडरफुल अनुभव कराने जा रहा है। परसों बाबा ने एक बात कही थी, विनाश काल में कौन सुरक्षित रहे? बिल्ली के बच्चे या भगवान के बच्चे? भगवान के बच्चे सुरक्षित रहेंगे ना, जो बाबा को साथ रखते हैं वो सुरक्षित रहेंगे। जिनको बाबा में संपूर्ण विश्वास होगा, वो निश्चय की भी बहुत बड़ी परीक्षा होगी। निश्चय केवल इतना नहीं कि बाबा हमें पढ़ाते हैं या बाबा आता है, निश्चय की परिभाषा बहुत गहरी हो जाएगी। निश्चय का स्वरूप अति अति गहरा है। मेरे पास बहुत माताएं आती है ना, मैं उनके निश्चय को साक्षी होके देखता हूँ कि बेचारी माताएं 20-20 साल से ज्ञान में तो हैं, पर निश्चय की गहराई शायद उनको समझाई नहीं गई अब तक। चिंतित रहती हैं, हमारे छोटे पोतरे हैं, इनका क्या होगा। मैं बस उन्हें देखता हूँ, इतना ही कहता हूँ कि जो तुम्हारा होगा इनका भी हो जाएगा। क्यों सोचते हो, इनका सब कुछ अच्छा होगा, चिंता ना करो। तो बाबा हम सभी को बहुत अच्छा सिखा रहा है, अभी से सीख लें बाबा की मदद कैसे ली जाए। और बस इसकी बहुत अच्छी तैयारी रखें। मुझे एक बात और याद आ गई, निर्वैर भाई ने, बाबा अपने कमरे में आए हुए थे, बाबा से कुछ प्रश्न पूछा, प्रश्न ठीक ठीक मुझे याद नहीं, उत्तर याद है। बाबा ने कहा, अंत में ऐसा होगा जैसे तुम कहेंगे बाबा, मेरा बाबा, और बाबा को अपने चारों ओर उपस्थित देखेंगे, प्रैक्टिकल दिखाई देगा, बाबा है यहीं। तो अभी से हम बाबा को ऐसा बांध लें। कौन सी दो रस्सियां बताई बाबा ने? स्नेह की और अधिकार की। स्नेह की रस्सी को ढीला न करें, ऐसा बांध लें कि बस मेरा बाबा कहा और बाबा आ गए, और बाबा का आना ही काफी है, उनकी मदद तुरंत मिलने लगेगी। तो हम सभी इसका बहुत बहुत फायदा उठाएं। और अब हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत किससे की थी बाबा ने मुरली के? नहीं, ये तो कल थी, टेप से परसों की बात कर रहे। होलीएस्ट और हाईएस्ट, बोलो माताएं दोनों अंग्रेजी के सब। पीछे वाली माताएं सोच रही है अंग्रेजी पढ़ी तो नहीं थी। हाईएस्ट माना महान, होलीएस्ट माना परम पवित्र, होली माना पवित्र, होलीएस्ट बहुत पवित्र, सबसे ज्यादा पवित्र। तो बाबा ने कहा भी राजा और रॉयल फैमिली भी तुम जैसे कभी नहीं होती, तुम जैसा महान भी कोई नहीं होता, तुम जैसी पूजा भी विधि पूर्वक किसी की नहीं होती। हम सभी महान हैं। आज इसी नशे में सोएंगे और होलीएस्ट हैं। हमें ये बहुत अच्छी तरह विश्वास रहे, होलीएस्ट माना जिन्होंने पवित्रता धारण कर ली है वही संसार की सुंदरता है, शोभा है। जैसे बाबा कहते थे कि सन्यासियों के कारण भारत थमा रहा, ये बाबा की भाषा यानी सन्यासियों की प्योरिटी ने संसार को बल दिया है। अगर सन्यासी भी ना होते सब कुछ नष्ट हो जाता ना। जैसे क्रिश्चियन रिलीजन में हुआ, आप में से बहुतों को पता ही नहीं होगा, क्रिश्चियंस ने पादरियों तक सबको पवित्र रहना चाहिए, लेकिन उनके यहां ये समस्या हो गई कि पवित्र मिलते ही नहीं जिनको पादरी बनाया जाए, तो भारत से ले जाते हैं, इंपोर्ट करते हैं भारत से, भारत पादरियों को भी एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भारत वालों के अंदर अभी भी प्योरिटी का बीज है, बहुत भारत से मिलते हैं उन्हें। तो जब किसी धर्म में धर्म के नेता भी पवित्रता छोड़ दें तो समझ लेना चाहिए समाप्ति की ओर है वो। और हिंदू धर्म में सन्यासी रहे बहुत, यहाँ हमारे समाज की मर्यादाएं ऐसी रही कि कन्याएं बहुत पवित्र रही, और भी कुछ कुमार भी पवित्र रहे, और जब ये सब खेल पूरा होने लगा तो क्या किया बोलो, आप सबको पता है ना, बाबा आ गए। जब उसने देखा कि मेरा भारत, मेरी जन्मभूमि भी इन विकारों की अग्नि में जलना चाहता है, तो वो आ गए, पवित्रता की स्थापना कर दी, अनेकों को पवित्र बना दिया, और फिर से पवित्रता के बीज भारत भूमि पर बहुत मजबूती से अंकुरित होने लगे। तो हम सबको ये पता होना चाहिए पवित्र आत्माएं इस संसार की शोभा हैं। ऐसे हैं जैसे सोने का जेवर बनाया जाए, लगता तो वो भी अच्छा है, लेकिन उसमें हीरे जड़ दिए जाएं तो उसकी चमक, उसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो हम अपनी इस महानता को भूलें नहीं, जिन्होंने भी पवित्रता अपना ली है ये भूल जाएं कि हमारी पवित्रता संपूर्ण नहीं है, हमारी पवित्रता थोड़ी कम है, हमें संकल्प चल जाते हैं, वो तो हमारी एक साधना है, हमें अपनी प्योरिटी को संपूर्णता की ओर ले चलना है। योग बल से, स्वमान के बल से रोज बाबा हमारी सवेरे सवेरे पालना करता है। तीन शब्द बोले थे ना कल, पढ़ाई, संभाल, श्रृंगार, बहुत अच्छे सर, मुझे बहुत प्रिय लगे। संभाल करता है भगवान अपने बच्चों की, माँ बाप भी संभाल करते हैं ना अपने बच्चों की, सच्चा माता पिता अपने बच्चों की भी संभाल करता है और श्रृंगार भी करता है। तो हम अपनी प्योरिटी को बढ़ाते चलेंगे परंतु कहीं भी स्वयं को निराश नहीं करना है, बहुतों के साथ क्या हो रहा है कि प्योरिटी अपना ली, लेकिन थोड़ी बहुत है पवित्रता देखकर अपने को निराश कर लेते हैं, खुशी को गुम कर लेते हैं। ये नहीं करना है। खुश रहेंगे, बहुत उमंग उत्साह में रहेंगे, तो रही सही है, पवित्रता भी समाप्त हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए निराश नहीं, होगा या नहीं होगा, कब पहुंचेंगे, माया बहुत प्रबल है, हमारे पुराने संस्कार बहुत खराब हैं, इस सब को भूल के साधनाओं में लग जाएं, तो निरंतर आगे बढ़ते चलेंगे। और ये भी ध्यान रखना है कि हमारी ये पवित्रता की शक्ति किसी भी व्यर्थ संकल्प में, परचिंतन में, ईर्षा द्वेष में नष्ट न होती हो। पवित्र कोई बन गए हों, लेकिन उसके पास ये छोटी चीजें हों, ईर्षा द्वेष, बहुत सोचते रहना, दूसरों का सोचते रहना, खुशी गुम करते रहना, अवगुण देखते रहना, तो क्या होगा, प्योरिटी शक्ति नहीं रहेगी, बल नहीं रहेगा। इसलिए पवित्रता अपनाने के साथ इन चीजों से भी मुक्त होने वाली आत्माएं बहुत शक्तिशाली बन जाती हैं। इसका सभी को बहुत ध्यान देना है। हम सभी महान आत्माएं हैं। अब सुनाएंगे सभी क्यों हैं, ताकि सबको आज अच्छी तरह नशा चढ़ जाए। बोलो, तुम बोलो सबसे पहले, सबसे छोटा स्टूडेंट, क्यों हैं हम महान? छोटा नहीं है ये, बड़ा है, छोटा तो इधर बैठा है। बोलो, भगवान ने हमें चुना है, जिनको, जिन पर भगवान की नजर हो, और चुना होगा ऐसे ही थोड़ा ही, कुछ खास काम के लिए चुना होगा, नहीं कुछ खास देने के लिए चुना होगा। हम महान हैं, तुम बोलो। भगवान को हम मदद कर रहे हैं, वो हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम महान हैं। बोलो, सब बोलो अच्छी अच्छी बातें। स्वयं भगवान ने कहा तुम महान हो, हम महान हैं। कहाँ थे हम शुरू में, भूल गए? मैंने थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछ लिया, सतयुग में कहाँ थे? देवी देवता थे। मैं कहाँ पूछ लिया, सोच रहे सतयुग में तो थे। सतयुग में हम क्या थे? पवित्र महान देवी देवता, जिनके चेहरे ही कैसे होंगे उसको तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते आज, क्योंकि ऐसे चेहरे किसी के हैं नहीं। सुंदर से सुंदर व्यक्ति भी उनके आगे कुछ नहीं है। हम दो युग तक बहुत महान थे, देवकुल की महान आत्माएं। और मानताएं सुनाओ, सवेरे से क्या चालू होती है हमारी? उठते हैं तो पहले तो उठाता ही भगवान है, उठते ही प्रभु मिलन होता है। पढ़ाने कौन आता है, मानता है या नहीं? खिलाता कौन है? किसके घर में रही है माताएं? किसकी पालना? महान हो गए ना। तो इस सुने संसार में कुछ लोग ऐसे बैठे हैं इधर, जिनको भगवान की पालना मिलती है, उनकी समझ में भी नहीं आएगा बोलते क्या है, कहेंगे कि इन्हें बहका दिया, इन्हें पता नहीं क्या बोलते रहते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां। भगवान की पालना, पढ़ाता भी वो, पढ़ाई भी बहुत बड़ी पालना होती है ना। किसी को किसी सब्जेक्ट के अच्छे टीचर मिल गए हो, पता है ना, सब पढ़े है ना, वो सब्जेक्ट सरल हो जाता है। और सरल सब्जेक्ट का भी टीचर वैसा ही मिला हो जिसको खुद भी ना आता हो। मुझे आज सुना रहे थे कि आजकल गांव में स्कूल आदि बहुत खोल रहे हैं, तो टीचर बहुत भर्ती होते हैं, तो कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिनको बेचारों को कुछ नहीं आता है, तो पत्रकार तो आनंद लेते हैं ना, उन्हें ऐसे समाचार चाहिए सुशील। तो पहुंचे पत्रकार, टीचर से पूछा भारत का प्रेसिडेंट कौन है, और बहन जी थी बेचारी, वो सोचने लगी पता नहीं कौन है, यूपी करना। फिर सोच सोच के बताया राम नाईक है। वो राम नाईक है यूपी का गवर्नर। उसने फटाफट नोट कर लिया और छाप दिया। वो तो उनको तो ऐसा ही मसाला चाहिए ना मजेदार। फिर हेडमास्टर जी के पास पहुंचे किसी के, उससे भी कुछ ऐसा ही प्रश्न पूछा। और राम का धनुष, शिव का धनुष किसने तोड़ा उसकी तो कहानी सुनी है ना। माताओं ने नहीं सुनी, सुना देता हूँ। चलो स्कूल में पहुंच गए पत्रकार, बच्चों से पूछा, खड़ा किया, शिव का धनुष किसने तोड़ा। सब घबरा गए, हमने तो तोड़ा नहीं भाई, क्या हुआ। घबरा गए। हेडमास्टर जी आ गए, हेडमास्टर जी से पूछा शिव का धनुष किसने तोड़ा। तो उन्हें भी नहीं पता था, तो कहा वो जो पीछे लड़का है ना, वो बड़ा बदमाश है, उसने तोड़ दिया होगा, आप चिंता न करो, हम सबसे पैसा इकट्ठा करके दूसरा बनवा देंगे। ऐसे टीचर मिल जाएं तो बच्चों का भी बेड़ा पार। मैंने कहा जब हम लोग छोटे थे पढ़ते थे तो ये सब चीजें स्कूलों की किताबों में खूब आती थी, अब नहीं आती होंगी, मुझे पता नहीं, मैंने किताबें नहीं देखी बच्चों की, पर लगता है अब वो कांग्रेस ने सब हटवा दिया था। बीजेपी अगर कोशिश भी करती है तो उसको बदनाम करते हैं, लेकिन इन भारतीय जो संस्कृति है, हमारा जो प्राचीन ज्ञान है, उसका कुछ तो बच्चों को पता होना चाहिए। बच्चों को ये भी नहीं पता आजकल के गीता ज्ञान भी कभी दिया गया था क्या। चलो कृष्ण ने दिया था, वो भी नहीं पता। तो जिनको भगवान पढ़ाता हो, कितनी बड़ी पालना है उनकी, सोच लें। राह दिखा दी ना, किसी को राह दिखा दी जाए भटकते को, कितनी अच्छी चीज होती है। तो हम सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को याद करें, हम महान आत्माएं हैं। इस नशे में रहेंगे तो क्या फायदा होगा, महान बन जाएंगे। हो गया था? चलो भाई, अच्छा है, एक मिनट में मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, मोबाइल बड़ी गड़बड़ करते हैं। एक चीज और इसके साथ, जिसको अपने भाग्य को चमकाना हो, नोट कर लें सभी, बुद्धि में कर लो, वो सवेरे उठते ही और दिन में सच्चे मन से याद करें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, सच्चे मन से। और आपके बच्चों को भी ये सिखा दें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जितना बच्चे बोलेंगे और सोचेंगे, भाग्य चमकता जाएगा। सभी माताएं भाई इस रहस्य को जान लें, कहीं आपका भाग्य साथ न देता हो, आपको दिखाई दे, सवेरे उठते इस नशे का अभ्यास करने लगो, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, स्वयं भाग्य विधाता मेरा भाग्य बना रहा है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। तो मैं होलीएस्ट, हाईएस्ट और बहुत भाग्यवान, रिचेस्ट, ये याद करेंगे सोते ही, और सवेरे उठकर और सोने से पहले प्रभु मिलन करेंगे, आज भी कल सवेरे भी। ओम शांति। प्रभु का ध्यान।